sconvolgente. ये ज्ञान मार्ग और योग का मार्ग मुश्किल है या सहज है?
सहज से
सहज और कठिन से कठिन। सहज है तो क्यों सहज है और मुश्किल है तो क्यों मुश्किल है? संडे की मुरली के आधार से बाबा ने कहा था ये बहुत सहज है, क्यों? आप और बाप केवल दो ही शब्द है इसमें, जिसमें सारा ज्ञान समाया हुआ है। एक और पांच छह कारण बताए हैं बाबा ने, ये ज्ञान मार्ग योग मार्ग सहज क्यों है? डबल विदेशियों से मुलाकात या फिर जो भी 69 के बाद आए हैं उन सभी से मुलाकात, मेहनत, मनन और मक्खन, पहले वालों ने मेहनत की, मनन किया, मक्खन निकाला और टाइम पर आ गए, खाने के टाइम पर आ गए, बाकी जो भी आए। एक तो ये पहला कारण, ये ज्ञान कहानी की तरह सुनाते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। दूसरा क्या है?
बार बार सुना है,
रिपीट हो रहा है, ये कोई पहली बार नहीं सुन रहे हो, रिपीट हो रहे। एक तो कहानी की तरह सुनाते हैं और रिपीट हो रहा है। चौथा
बाबा प्यार से समझाते, स्ट्रिक्टली नहीं समझाते।
अच्छा चलो, प्यार से समझाते। तो यहाँ पर एक बात जो उसी से संबंधित था, नजदीक का संबंध है, प्राप्ति को देखो, याद को देखो। तो याद जो है वो यहाँ पर नजदीक का संबंध है, इसके लिए नजदीक सहज है। दूसरा, प्राप्तियों के आधार पर याद है, इसके लिए सहज है। और सबसे महत्वपूर्ण है जो सहज है, उसका एक कारण जो बताया वो है अनुभव। अनुभव जो भी ज्ञान की पॉइंट है वो ज्ञान की पॉइंट नहीं है, हर पॉइंट में अनुभव है। एक है विचार, एक है भाव, भावनाएं। भावनाओं का संबंध अनुभव से साथ है। कोई भी चीज हमें पता चल जाए कि ये सही है ये गलत है, केवल विचार काफी नहीं है, भावनाएं वैसी हो जाए। जब भावनाओं में वो अंदर आ जाता है तो वो स्वतः ही परिवर्तन हो जाता है, चाहे वो संबंध है, चाहे वो दृष्टिकोण हो या कोई धारणा हो। तो वो भाव, तो बाबा यहां बात कर रहे अनुभव की। ये ज्ञान केवल कोरा ज्ञान नहीं है, परंतु एक एक पॉइंट का अनुभव है। केवल याद करने वाली बात नहीं है कोई, परंतु जो भी ज्ञान है उसका एक एक महावाक्य है, उसमें इतनी गहराई है, इतनी डेप्थ, लेंथ, ब्रेथ, सब कुछ है, ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई। अगर उसमें हम जाएं तो जीवन की जो भी मुश्किलात, जो भी परेशानी है, सब समाप्त हो जाएगी।
तो
और प्रैक्टिकल है ज्ञान। तो ये छह बातें बाबा ने जो कल कही, इसके वजह से सहज है। दूसरी जो बात है, आपने जो एक कहा कि ये प्यार से समझाते हैं बाप, स्ट्रिक्टली नहीं समझाते। और भी कुछ कारण है मुरली को छोड़कर?
कितने बार सुने
हुए? वो आ गया उसमें, रिपीट हो रहा है। ये ज्ञान सहज क्यों है, प्रश्न ये है, ज्ञान और योग सहज क्यों है? ये ज्ञान सहज क्यों है? क्योंकि ये भाषा सहज है, कोई क्लिष्ट डिफिकल्ट भाषा नहीं है, सिंपल सी भाषा में सुनाया गया ज्ञान है।
और यहाँ साथ साथ का मन,
ये ज्ञान है, साथ साथ मतलब प्राप्ति जो है उसके अलावा
स्थित करा के हमें स्मृति दिलाते
हैं, समान में स्थित कराते हैं। ये सारा जो ज्ञान है वो एक अलग प्रकार का ज्ञान है, स्थूल ज्ञान नहीं है, जैसे इंजीनियरिंग का, मेडिकल का या कोई कंस्ट्रक्शन का जो ज्ञान है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये वैसा ज्ञान नहीं है, ये अति सूक्ष्म ज्ञान है। इस ज्ञान को समझने के लिए आत्मा उसी स्वरूप में स्थित होकर समझ सकती है। अगर देहभान में कोई है वो कितना भी बड़ा विद्वान है परंतु इस ज्ञान को नहीं समझ सकता, क्योंकि इस ज्ञान की पहली अनिवार्य शर्त है आत्माभिमानी स्थिति। जब तक हम आत्माभिमानी नहीं बनते, आत्मिक दृष्टिकोण हमारा नहीं हो जाता है, अंदर केवल आत्मा का ही चिंतन नहीं चालू है, देह का अगर चिंतन चालू है, देह की वासनाएं उसमें समाई हुई है, तो यह ज्ञान बुद्धि में नहीं ठहर सकता। देह देह की वासनाएं, देह को देखना, रचना में आकर्षित होना, रचना भी भिन्न भिन्न रूप रंग ढले रचेगी। कल का वरदान था ना, मास्टर रचता के स्वरूप में स्थित हो जाना, पावरफुल स्वरूप में स्थित हो जाना, वो आत्मिक स्वरूप ही है। जागती ज्योत स्वरूप में स्थित हो जाना, शस्त्रधारी स्वरूप में स्थित हो जाना, तो ये स्वरूप केवल आत्मा का ही है। इस ज्ञान में आगे वो है जो जितना आत्माभिमानी है। जिसका देहाभिमान जितना ज्यादा है वो उतना पीछे है, चाहे ज्ञान कितना भी हो। फिर तो सारा पुरुषार्थ घुमा फिरा कर एक ही जगह आता है, आत्म केंद्रित। देह से स्वयं को अलग करना, ये देह दूसरा है और ये मैं हूँ।
दो तीन दिन पहले ईश्वरी संप्रदाय हो, देहमान में बनते संप्रदाय बन जाते,
असुरी संप्रदाय है देहभान। तो आत्म अभिमान का जो राज्य है, एक है देहभान का राज्य, देहभान का जो राज्य है उसमें स्वतः ही बेचैनी है, दुख है, अनसर्टिनिटी है, अनिश्चिंतता है, तनाव की अवस्था है। वो जैसे मोह जो है, किसी में हमारा मोह है वो तनाव की अवस्था है। जहां प्रेम है किसी से वहां तनाव नहीं है, मोह में बहुत तनाव है, छूट ना जाए, तनाव है, स्ट्रेस है, टेंशन है, विकारों में तनाव की अवस्था है वो। तो देहभान अगर है तो एक अनिश्चिंतता, एक तनाव, एक बेचैनी, एक अतृप्ति का भाव है उसमें। और जैसे ही आत्माभिमानी स्थिति में हम आ जाते हैं, स्वतः ही तृप्ति हो जाती है, स्वतः ही शांत हो जाता है चित्त, स्वतः ही उसका भटकना बंद हो जाता है। और एक मुरली में बाबा ने कहा हुआ है, आत्माभिमानी बनना, इसमें बाप की याद ना हो ये हो नहीं सकता। बाप को याद करना भूल जाओ, केवल आत्माभिमानी भी बन गए तो वो स्वतः ही आत्मा से संबंधित जो कुछ है वो स्वतः ही याद आएगा। देह जैसे देह भान में आते ही देह से संबंधित सब कुछ है, सब आ जाएगा, फिर वो कुछ भी हो सकता है। देह भान में अगर आ जाते हैं तो देह भान का सूक्ष्म रूप और देह भान का बड़ा से बड़ा रूप काम विकार, आत्मा यहां से वहां तक भी पहुंच सकती है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। चाहे वो कितना भी ज्ञान में हो, कितना भी योगी हो, कितना भी तपस्वी हो, परंतु अगर देह भान में आ गया और उसने अपनी चेकिंग नहीं की तो नीचे 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 जाता, वो विकर्म भी कर सकता है, कुकर्म, विकर्म, दुष्कर्म, वो सब कुछ हो सकता है उसके हाथों से, क्योंकि वो विस्मृति की अवस्था है। संसार क्या है, विस्मृति की अवस्था में है, देहभान में है, तो देहभान की वजह से सारे विकर्म हो रहे हैं। अगर देहभान ही सभी विकर्मों का जड़ है तो आत्माभिमान ही सभी सुकर्मों का जड़ है। तो देहभान से अगर मुक्त होना है, विकारों से अगर मुक्त होना है, परेशानी से मुक्त होना है, दुखों से मुक्त होना है, बेचैनी से मुक्त होना है, आज बोला ना मन के उलझन, मन की सजा, पांचवी डॉनर कौन है, वरदान, मन की सजा, मन की उलझन से भी जो परे है, ऐसी जो अवस्था है वो आत्माभिमानी अवस्था है। तो निरंतर एक ही अभ्यास सबसे मुख्य है, आत्म अभिमानी स्थिति का। वो भी कैसे, केवल बाबा के कमरे में बैठकर नहीं, बैठे बैठे, चलते फिरते, उठते बैठते, घूमते फिरते आत्मा हो, केवल एक स्वरूप, और वो भी मैं चमकती हूं, ज्योति हूं, आत्मा हूं, ज्योति हूं, सितारा हूं, सभी आत्माएं हैं, मैं आत्मा, सभी आत्माएं। आत्मा कैसी है, आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा का रूप क्या है, रंग क्या है, वजन क्या है, इन सब आत्मा के बारे में चिंतन करते रहना, जो हमको पता है फिर भी उसका बार बार चिंतन करते रहना। आत्मा कैसी, अग्नि उसे जला नहीं सकती, छोटा सा संकल्प है कि मैं आत्मा, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, मतलब अग्नि अगर हो जाए तो शरीर भस्म हो जाएगा, मैं नहीं, मैं आत्मा। हवा सुखा नहीं सकती, शस्त्र कोई काट नहीं सकता, तो ये सारे जो है ना, मैं अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, छोटे छोटे संकल्प है, परंतु एक एक संकल्प में बल है, पावर है, बहुत बड़ा तत्व ज्ञान इसमें भरा हुआ है। केवल एक छोटा सा संकल्प कि मैं आत्मा हूं, मैं देह हूं, ये जो देह भान है सारे ही उलझनों का, समस्याओं की जड़ है, उससे आत्मा स्वतः ही ऊपर निकल जाती है। अगर कोई विकारी व्यक्ति अभी विकर्म करने ही जा रहा है और उस बीच में 10 मिनट पहले वो आत्माभिमानी बन जाए तो वो विकर्म करने का संकल्प विलीन हो जाएगा। इतनी पावर इस आत्माभिमानी स्थिति में, क्योंकि आत्मा में जैसे ही हम स्थित होते हैं स्वस्थिति में, स्वरूप में, स्वधर्म में, वैसे ही ये देहभान छोड़ना नहीं पड़ता, वो छूट जाता है, आप ही गिर जाता है। इतनी पावर इस आत्माभिमानी स्थिति में। तो हम चर्चा कर रहे थे ये ज्ञान सहज है क्योंकि ये ज्ञान आत्मा का है, कठिन भी है एक रीति से, वो उसके तो दूसरे कारण बताए बाबा ने, परंतु ये जो ज्ञान सुनाने वाला जो है ये सब पूर्ण सर्वश्रेष्ठ ऑथोरिटी है और हम जो इसे सुन रहे इस ज्ञान की लंबे समय से हमें प्यास थी। द्वापर से अब तक हमें एक तृप्ति की प्यास थी कि कई सारे ज्ञान सुने परंतु तृप्त नहीं हुई आत्मा। कई लोगों को सुना, शास्त्र पढ़े, ये किया, वो किया, इधर गए उधर गए, तृप्ति नहीं मिली। भोग में भी तृप्ति नहीं मिली, भोग का तो स्वभाव ही है अतृप्ति, जितना भोगोगे उतनी अतृप्त रहती आत्मा। उसका ये दुष्पूर कहते हैं, इच्छा है दुष्पूर है, दुष्पूर अर्थात कभी न तृप्त होने वाली।
जो जो दवा की मर्ज बढ़ता गया,
हाँ, जो जो दवा की मर्ज बढ़ता गया, इतना इसके पास गए उसके पास गए, अच्छा कितना भोगा, इतना भोगा, परंतु वो भोग ने हमको भोगा है, हमने भोगों को नहीं भोगा है, उल्टा हो गया, हम क्षीण हो गए, हम दुर्बल हो गए, हम थक गए, परंतु वो वैसे के वैसे ही। ये ऐसा कुचक्र है इस शरीर में कि कितना भी भोगो वो एडिक्टिव हो जाता है, फिर लत लग जाती है उसकी और प्राप्ति होती है दुख, फ्रस्ट्रेशन, अशांति, बेचैनी, अस्थिरता और फिर वही इच्छा वापस, कुचक्र है। इच्छा, भोग, दुख, और दुख से मुक्ति होने के लिए फिर इच्छा, फिर भोग, फिर दुख, ऐसा चक्र घूमता है और इसमें से निकल ही नहीं सकते बाहर। तोड़ने का एकमात्र साधन है आत्माभिमानी स्थिति, दूसरा और कोई साधन नहीं। संसार में कई सारी विधियां बताई है दुखों से छूटने की, ये एक ही फाइनल जो भगवान ने आके बताई। तो बाबा ने कहा ये ज्ञान सहज है, ये योग सहज है, सागर को उठाना मुश्किल है। ये सागर, ये ज्ञान बाबा ने सागर में दे दिया। योग 3 दिन का शिविर हो गया और ज्ञान 7 दिन का कोर्स हो गया, इसके लिए सहज है, फिर मुश्किल क्यों है? इसके भी 2 कारण बताए संडे की मुरली में। कौन से 2 कारण थे? पहला व्यर्थ संकल्प, दूसरा संडे की मुरली। 2 कारण, मुश्किल क्यों है, सहज की हुए तो हमने चर्चा कर ली जो बाबा ने कहा, मुश्किल की हुए, 2 पावरफुल कारण बताए मुश्किल के और उनका निवारण भी बताया।
तो भूल जाते हैं।
एक दूसरा कारण है भूलना। तो पहला कारण है व्यर्थ संकल्प, जो मार्ग है उसमें विघ्न बन के आ जाता है, रुकावट बन के बंधन बन जाता है, वो व्यर्थ संकल्प। हैमर कौन सा? हथौड़ा, व्यर्थ संकल्प का वो जो संस्कार है रुकावट बन जाता है। व्यर्थ संकल्प के हैमर से समस्याओं को तोड़ने लग जाते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा कब तक, आखिर कब तक, मुश्किल है हमारे साथ ही क्यों, ये सारे व्यर्थ संकल्प है। इसमें दिन और मास लग जाते हैं बाबा ने कहा। दिन मास क्या, सालों गुजर जाएंगे इसी में पर निकल नहीं पाएंगे। बाबा ने तो दिन मास कहा, इसकी विधि क्या बताई? एक ही शब्द है, ड्रामा, फुल स्टॉप, वो 1 सेकंड का शब्द है। तो ये जो भी प्रश्न उठते हैं, ये क्यों, ऐसा क्यों, मेरे साथ ही क्यों, ऐसा ही क्यों होता है, इसने, ये कब तक होगा, आखिर कब तक, ये सारे प्रश्न है। ये प्रश्न आने की वजह से ये ज्ञान और योग मुश्किल हो जाता है। विधि है ड्रामा के स्वरूप का चिंतन, ड्रामा क्या है, ड्रामा कैसा है, ड्रामा कैसा घूम रहा है, इसका चिंतन बार बार करते रहना। मैं आत्मा इस ड्रामा में घूम कर आई हूं, जिसको हम सुदर्शन चक्र कहते हैं। ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा फिक्स्ड है, ड्रामा भगवान को पसंद है तो तुम्हें भी पसंद होना चाहिए। ड्रामा कल्याणकारी है, न्यायकारी है, विविधतापूर्ण है। ड्रामा कैसा है? न्यायकारी है। यहां किसी के साथ भी कोई भी अन्याय नहीं हो रहा है। दिख रहा है पर अन्याय हो रहा है। ये ऐसा क्यों, ये इसके साथ ही ऐसा क्यों, दिख रहा है अन्याय हो रहा है परंतु ड्रामा कल्याणकारी है, क्योंकि हम जो देख रहे हैं वो थोड़ा सा देख रहे हैं, बस इतना, ट्यूब्युलर विजन जिसको कहते हैं, इतना ही देख रहे,
विनाशी आंखों से देख रहे,
विनाशी आंखों से या त्रिकालदर्शी, दर्शन वाली हमारी स्थिति नहीं है, त्रिकाल को नहीं देख रहे हम, एक काल को देख रहे बस, जिसमें हमको लग रहा है कि इसके साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, इसके साथ बहुत अन्याय हो रहा है, परंतु उसके पीछे का क्या है और आगे उसका क्या पद है ये देखना, तब देखोगे तो नहीं लगेगा।
एक बार किसी सीनियर भाई ने बाप दादा से बोला था कि बाबा मुझे ड्रामा पसंद नहीं, ड्रामा चेंज हो सकता है, बाबा ने कहा था बच्चे हो सकता है लेकिन इससे हल्का ही ड्रामा बनेगा, इससे अच्छा ड्रामा नहीं बन सकता।
हाँ, वो एक बार
इस त्रिका कोई भी घटना त्रिकाल से देखता तो मैं ही काल से देखता।
निर्वर भाई जी ने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी कि बाबा के पास बहुत सारे ड्रामा आए थे तो ये ड्रामा सिलेक्ट किया क्योंकि ये सबसे अच्छा था उनमें से, बाकी जो थे ना उसमें तो अगर वो होता तो ज्यादा प्रॉब्लम होता था, ज्यादा दुखी होते। ये मतलब इसकी जो स्क्रिप्ट थी कि भाई आधा कल आधा सुख आधा दुख, ये जो स्क्रिप्ट है अच्छी है, बाकी इसमें कुछ और होगा। वो इतने सारे जो ड्रामा थे, सिलेक्शन करता है ना डायरेक्टर, कौन से अभी 10 लोग आ गए स्क्रिप्ट राइटर्स, इसकी भी स्टोरी उसकी भी उसकी उसके चार, कोई इसमें ट्रेजेडी हो रही है, कोई में हीरो मर रहा है, हीरोइन मर रही है, कोई कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, उसको लगा ये सबसे बेस्ट ड्रामा है, इसके लिए ये जो चुना गया है, ये सबसे, ये जो चयन किया गया है इस ड्रामा का, ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि दुनिया के सामने कौन सी मूवी आ रही है वो एक, अब दुनिया वालों को तो ये पता ही नहीं कि दूसरी भी आई थी बहुत सारी, वो तो जो नजदीक वाले हैं थोड़े उनको पता रहेगा कि भाई 10 मूवीज आए, 10 स्क्रिप्ट आई थी उसमें से ये सिलेक्ट किया गया, और उसको पता है वो जो बाकी 10 थे ना, अगर वो उस पर मूवी बनती तो इतना सुपरहिट ये मूवी नहीं होती। तो ये जो मूवी बनी है 5000 साल की, सुपर डुपर हिट मूवी है ये, ऐसा वैसा थोड़ी ना है कोई बनाने वाला, डायरेक्टर वो है भगवान, संसार के डायरेक्टर बनाते हैं तो इतना ये हो जाता है, तो ये मूवी का क्या होगा। और इस मूवी की रिकॉर्डिंग अभी हो रही है, अभी रिकॉर्डिंग होने होगी, फिर एक बार रिलीज हो गई सतयुग में फिर कुछ नहीं कर सकते उसमें,
रूहानी सो गए
अभी जो करना है अभी कर लो रिकॉर्डिंग, वो बार बार कट करते हैं ना, कट कट कट, अभी सीन ठीक नहीं गया फिर से करो, अभी ठीक से बोला नहीं डायलॉग फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। हम इस ड्रामा के हीरो एक्टर हैं, हीरो एक्टर भी है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर भी है, बेस्ट डायलॉग्स हमारे हैं, बेस्ट सिंगर मेल हम ही है, बेस्ट सिंगर फीमेल हम ही है, बेस्ट कोरियोग्राफी, बेस्ट स्क्रीन प्ले, वो जो अवार्ड्स मिलते हैं ना उधर, वो सब हमारे हैं। ये इस ड्रामा में उसी संडे की मुरली में था ना, डबल हीरा, हीरो एक्टर हो तुम, नैरोबी से मुलाकात, बाप के सिर के ताज के हीरे, बाप के सिर के ताज के हीरे, मन के मणि, बाप भी अपने से आगे रखता है आपको,
हमारे सिर पे जैसे बाबा ने ताज दिया है, जिम्मेवारी का ताज, सेवा का ताज, बाबा के सिर पे कौन सा ताज है,
अलंकार है बस, भाषा की सुंदरी है, बाकी कुछ नहीं है, बाबा का पूरा घुमाना है, सारे शब्दों का खेल है और कुछ नहीं है, बात तो एक ही चीज है, आत्मा समझ बाप को याद कर, इसी बात को अभी 80 साल तक चलाना है तो कैसे चलाएंगे, एक ही भाषण देंगे कि आत्मा समझो बाप को याद करो, आत्मा समझो, एक ही चीज को अलग अलग विविधतापूर्ण अलग अलग ढंग से, संसार के उदाहरण, यहाँ के उदाहरण, वहां के उदाहरण, शब्दों से खेलना, इंग्लिश शब्द, हिंदी शब्द, सिंधी शब्द, मराठी शब्द, गुजराती शब्द, नेपाल के शब्द, मैथिली भाषा, सारी भाषा मिक्स करके, संस्कृत भाषा, कथंती सुनंती जावंती आवंती, वो सारा मिला के एक नया तैयार किया, क्योंकि इतना चलाना था ना, तो
सबको रिकॉर्ड देना है।
हाँ, तो सारी बातें उसमें है, तो हम बात कर रहे थे वो ताज वाली, कि उसमें कहा डबल हीरो, उसमें भी कहा ना फिर तुम अभी हीरा और हीरो दोनों है, तो डबल हीरा हो, तो इस ड्रामा के हम हीरो पार्टधारी है, और ये ड्रामा सबसे बेस्ट ड्रामा, इससे अच्छा कोई ड्रामा हो ही नहीं सकता। तो ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा न्यायकारी है, ड्रामा विविधतापूर्ण है, ड्रामा में हर एक्टर कैसा है,
परफेक्ट
परफेक्ट है और कैसा है?
संपूर्ण निर्दोष,
संपूर्ण निर्दोष है, किसी का कोई दोष नहीं है यहाँ पर, यूनिक है, अनूठा है, अद्भुत है,
हर कोई संतुष्ट है अपने पास।
नहीं ये नहीं कह सकते, ये ड्रामा की पॉइंट नहीं है, ये पुरुषार्थ है, ये पुरुषार्थ है। ड्रामा की जो मेन पॉइंट से ये इधर आती है कि ड्रामा में अदली बदली नहीं हो सकता है, ड्रामा रिपीट होता है, ड्रामा हुबहू रिपीट होता है, ड्रामा में जो हो रहा है वो कल्प पहले हुआ था, ड्रामा में नथिंग न्यू, ड्रामा फिक्स्ड है, ड्रामा जू मिसल चलता है, ड्रामा की टिक टिक चलती रहती है, ये सारी पॉइंट है ड्रामा की। तो ये सारी पॉइंट 24 घंटे में एक बार बुद्धि में घूमना चाहिए, 24 घंटे में कम से कम एक बार या दो बार सारी पॉइंट्स। कि मोस्टली जो बेस्ट टाइम है मुझे लगता है शाम का समय, रात का नहीं, शाम का जो योग है 6 और 8 के बीच का जो समय है उसमें, इस टाइम में कि ये ड्रामा एक्यूरेट है, ये ड्रामा कल्याणकारी है, ये ड्रामा सत्य है, ये इस ड्रामा में जो हो रहा है वही होना चाहिए था, बहुत अच्छा, अगर ये नहीं होता तो कुछ गड़बड़ होती, ये ड्रामा सत्य है, जो हुआ वही अच्छा है, सबसे बेस्ट है, और इस ड्रामा में अकल्याण हो नहीं सकता। अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण छिपा हुआ है, नुकसान के पर्दे के पीछे फायदा छुपा हुआ है, हम नहीं देख पा रहे हैं।
हार के सामने जीत खड़ी,
हार के सामने जीत खड़ी,
सफलता निश्चित है,
सफलता निश्चित है। फिर ये दूसरे टाइप के पॉइंट्स है ड्रामा, पर मुख्य जो ड्रामा की ये इतनी पॉइंट्स है। तो बाबा ने कहा ये ड्रामा की पॉइंट्स अगर है तो क्या, क्यों, कैसे, ये प्रश्नचित्त नहीं होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे। तो ये जो है ये चीजें उसको मुश्किल बनाती है, पहला तो ये। दूसरा बताया भूलना, डायरी में लिखी हुई ये पॉइंट्स बुद्धि में भी है पर समय की डायरी में दिखाई नहीं देती, टाइम पर परिस्थिति के समय, समय की डायरी में पॉइंट्स दिखाई नहीं देती। उसके लिए चार चीजें करो, कौन कौन सी? पहले तो रिपीट करते रहो, रिवाइज करते रहो, इसके लिए ज्ञान चर्चा बहुत आवश्यक है।
महाभारत में दिखा है कर्म पर समय पर वो
याद नहीं आता है, वो तो शाप की वजह से, हाँ टाइम पर याद नहीं आता है, वो उसका जो पहिया है वो धस जाता है नीचे, वो गिर जाता है, ये सब बताया, उसकी हार हो जाती है निर्णायक युद्ध में, उसकी हार, भले वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, अर्जुन से भी श्रेष्ठ। तो टाइम पर याद न आना वहां हार हो जाती है। जैसे एग्जाम के लिए बहुत प्रिपेयर करके जाते हैं कोई लोग, परंतु पेपर आते ही भूल जाते हैं। हमारी जो क्रिटिकल केयर की एग्जाम हुई थी, आईसीयू की एग्जाम्स होती है, हायर एग्जाम्स होती है थोड़ी, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद की एग्जाम्स होती है, एमडी के बाद के जो एकदम मतलब हॉट केसेस जिसमें पेशेंट वेंटिलेटर पे है और उसके ऊपर एग्जाम होती है और बहुत हायर लेवल के एग्जामिनेशन होती है। तो उसमें एक डॉक्टर थी लड़की, अभी वो 4-5 साल से आईसीयू में काम कर रही है, दिन रात आईसीयू इमरजेंसी हर प्रकार की, अभी वही उसको हॉट केस, एक कोल्ड केस और हॉट केस होता है। तो उसने एग्जामिन सब किया और 3 लोग आ गए एग्जामिनर और प्रश्न उत्तर चालू हुए, वाइवा जिसको कहते हैं, वो एकदम ब्लैंक हो गई, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं याद आया, सब फुल फुल पसीना पसीना और ब्लैंक फेल। ऐसा नहीं कि उसके पास ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं कि वो पेशेंट मैनेज नहीं कर सकती है, उसको सब पता है कैसे मैनेज करना, सीरियस से सीरियस पेशेंट भी मैनेज कर सकती है, परंतु वो टाइम पर वो एग्जाम का जो माहौल होता है, ये वाई वाई, ये केस के बाद वो केस के बाद उधर, फिर उधर एक्सरे में जाओ, उधर सीटी स्कैन में जाओ, सीटी दिखाए दो दो तीन तीन, ऐसे सब एग्जाम होती है, 4 सीटी स्कैन रख देंगे, 4 एक्सरे रख देंगे, इधर ये क्या है, उसमें क्या है, उसमें क्या है, बहुत टफ मतलब ब्लड रिपोर्ट्स रख देंगे, इसमें से उसका डायग्नोसिस क्या है, पेशेंट को कौन सी बीमारी, खाली रिपोर्ट देखकर, इस तरह की एग्जाम होती है वो, तो उसमें फेल। पेपर के टाइम पे याद ना आना चाहे कितना भी हो, बाबा ने कहा डायरी में लिखा है बुद्धि में है परंतु समय की डायरी में दिखाई नहीं देता है, इसके लिए क्या करो, रिवाइज करो, बार बार याद करो, एक बार जो पढ़ा हो एक बार पढ़ने से नहीं होता है, लंबे समय का अभ्यास और बार बार पढ़ते रहना पड़ता है, ज्ञान में डुबो के रखना पड़ता है मन को, तो ही होता है ये। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप अनुभव में लाओ, क्या कहा दूसरा, अनुभव में लाओ इसको, केवल एक तो रिवाइज किया फिर उसको अनुभव में ला, तुरंत प्रैक्टिस करना, अभी अभी और अभी अभी प्रैक्टिस, अभी भी सुना अभी भी प्रैक्टिस, अभी भी सुना अभी भी प्रैक्टिस। जो भी छोटे मोटे वाक्य आते हैं, जीवन डोर तुम्ही से बांधी, तो जीवन की डोर एक से बंधी हो, नाता तोड़ एक से निभाना हो, कनेक्शन एक से हो, और किसी से डोर बांधनी नहीं है। ये मुरली है, परंतु इसका प्रैक्टिस कहीं दूसरी माया पर डोर बांधने नहीं देती है। माया कम नहीं है आज की मुरली में है, वो संसार में जो डोर बांधते हैं वो तो गिरने के लिए, ये तो अविनाशी वर्षे के लिए है। तो क्या हमारी डोर ऐसी बंधी हुई है या कहीं और बंधी हुई है, इधर उधर रस्सी, इससे उससे, इस आत्मा से उस आत्मा से, यहां की आत्माओं से अगर बंधे हुए हैं तो उधर कनेक्शन नहीं हो सकता है, पावर भी कम आएगी ऊपर से अगर इधर उधर बंधे हुए हैं तो। इसके लिए अनुभव सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट,
बाबा सब भूल जाते हैं।
नहीं वो नहीं है, यहां पर भूलते हैं उसके निवारण बताए चार। पहला रिवाइज, दूसरा अनुभव, तीसरा चेक, चौथा चेंज। चेक करो और चेंज करो, चेक करो और चेंज करो, ये चार चीजें हैं। जिससे क्या होगा, मुश्किल सहज हो जाएगी। इसके लिए बाबा ने आगे भी कहा है वही व्यर्थ संकल्पों के लिए कि हथौड़ा मत मारते रहो, इससे दिल शिकस्त हो जाएंगे, थक जाएंगे, मजदूरी नहीं करो, बादशाह बनो, बेगमपुर के बादशाह बनो, तिलकधारी, तख्त नशीन, ताजधारी हो, ये सारा बताया ना उसने। तो ये कल की मुरली का थोड़ा था, आज की मुरली में क्या कहा बाबा ने,
डोर बांध दो,
डोर बांध दो, पर माया बांधने देती नहीं, अब क्या करें,
संकल्पों की डायरेक्ट सजा मिलती है,
संकल्पों की। अच्छा चलो ये दूसरा पॉइंट है, संकल्पों की सजा, संकल्पों की उलझन, पास विद ऑनर वाले वो धर्मराज की तो सजा तो दूर की बात है, उसके पहले ये सजा, इससे भी जो मुक्त है, अपने ही संकल्पों की सजा, संकल्पों का उलझन, संकल्पों में कंफ्यूजन होना, श्रीमत का जहां जहां उल्लंघन होगा वहां ये सब होगा। बाबा ने कहा तुमको धर्मराज की सजाएं मिलेगी, अब धर्मराज कोई दूर बैठा हुआ नहीं है, स्थिति का गिर जाना,
योग नहीं लगना,
योग न लगना ही धर्मराज की सजा है,
खुशी न होना,
खुशी न होना, स्थिति का गिर जाना, इच्छा नहीं होना, अमृत वेले कोई अनुभव नहीं होना, उठने की दिल नहीं होना, ज्ञान चर्चा करने की दिल नहीं होना, मुरली पढ़ने की दिल नहीं होना, कैसे वैसे सुन लिया बड़ी मुश्किल से, काम चलाओ जाना, नेमिनाथ दिखावा, भोजन में बहुत ज्यादा रस उत्पन्न हो जाना, घूमने फिरने में रस उत्पन्न हो जाना, यहां वहां देखने में रस उत्पन्न हो जाना, यहां वहां की चर्चाएं करने में रस उत्पन्न हो जाना, ये सब है गिरना, ये है धर्मराज की सजा। अमृत वेले ही मिस हो जाना सबसे बड़ी सजा है।
संदेश में भी था भाई जी कि बाबा ने कहा था कि धर्मराज कुछ और नहीं है, तुम्हारे सामने जो परिस्थिति तुम खुद ले जाओ।
बाबा के ये तो अव्यक्त महावाक्य है, स्थिति का गिर जाना ही दंड है, 86 की मुरली, स्थिति का गिर जाना ही दंड है, और कोई दंड है ही नहीं, यही दंड है।
कल भी दीदी मिले थे, दीदी ने 71 का वो संदेश सुनाया था व्यक्त संदेश, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें थी, संदोष में आ जाना,
ये सारी जो है ना ये सब सजाए है, तो यही सजा है, दूसरी और कोई सजा नहीं है कहीं और, और हर आत्मा ये सजा हर दिन भोग रही है, हर एक को अपना अनुभव है कि हर दिन ही ये भोग रही है। केवल जो ज्ञान स्थिति में ऊपर है, ज्ञान ज्ञान में जिनकी स्थिति है, योग में जिनकी स्थिति है, समय कहीं बर्बाद नहीं हो रहा है, वही इससे छूटे हुए हैं, बाकी अगर देखो तो सभी इस व्यर्थ की उधड़बुन में लगे हुए हैं। चक्रव्यूह है, ये चक्रव्यूह में फंसे हुए जो है उनको ये पता ही नहीं चलता ये चक्रव्यूह है, जो इससे बाहर है वही देखकर बता सकता है कि ये आत्मा फंसी हुई है, जो इसके अंदर है उसे तो पता ही नहीं कि यही चक्रव्यूह है, उसको लगता है ये नॉर्मल है, परंतु ऐसी भी कोई अवस्था है कि जो ज्ञानमय अवस्था है जिसमें निरंतर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव है और जो हल्की अवस्था है वो इस अवस्था में रह के इस अवस्था का ज्ञान नहीं कर सकता, पता चल सकता।
हल्की अवस्था में रहने के बाद एक सेकंड कोई कुछ करता है तो भी बहुत लगता है, एक सेकंड एक मिनट की तो भी लगता है बहुत कर रहा है, लेकिन उसी में हम लोग कोई डूब जाते हैं तो भी दो घंटा चार घंटा के लिए तो भी लगता कुछ नहीं किए, दो घंटा बैठे एक घंटा बैठे।
तो ये सारी स्थिति की बात है सारी, जितनी जितनी हमारी अंदर गहराई बढ़ती जाती है बाहर ऊंचाई ऊपर होती जाती है, इधर अंदर गहराई इधर ऊंचाई संकल्पों की गहराई। तो एक तो ये बात कही वरदान में, और क्या कहा आज?
ज्ञान
और योग दोनों जरूरी है, नहीं तो खुशी का दीपक जो है वो बुझ जाएगा।
बाती
और घृत दोनों की आवश्यकता है, ज्ञान की भी उतनी आवश्यकता है तो योग की भी उतनी आवश्यकता है, और बिना ज्ञान के योग नहीं हो सकता है। और बिना वो योग के ज्ञान को धारण भी नहीं किया जा सकता है, दोनों पूरक है एक दूसरे के।
आपने बताया था बाबा ने मुरली में बोला था ना कि जहाँ पढ़ाई है वहाँ योग है,
जहाँ पढ़ाई है वहाँ योग है ही, जहाँ बाप बाप से प्यार अर्थात पढ़ाई से प्यार अर्थात बाप से प्यार। ज्ञान बाप को याद करो या बाप के ज्ञान को याद करो, एक ही चीज है। एक मुरली में ऐसा भी कहा हुआ, इसके लिए पढ़ाई सारी 18 जनवरी की मुरली किस पे थी? हमने 18 जनवरी की मुरली डिस्कस की इस क्लास में, तो इसके ऊपर थोड़ा हम आएंगे। 18 जनवरी वाली जो मुरली थी, कौन सा मास था? अव्यक्त मास, ठीक है। अव्यक्त मास पे अव्यक्त स्थिति पर मुरली नहीं है, अव्यक्त मास में फरिश्ता बनने पर मुरली नहीं है, अव्यक्त मास पर योग पर मुरली नहीं है, अव्यक्त मास में ब्रह्मा बाबा और ब्रह्मा बाप से प्यार कितना है उस पर मुरली नहीं है, मुरली किस पे है? पढ़ाई पर। कैसी अद्भुत बात है, इस तरह की मुरली कभी नहीं चली है। पढ़ाई पर अटेंशन एक, रुचि और शौक तीन शब्द आए मुरली में। अटेंशन रुचि अर्थात इंटरेस्ट, शौक अर्थात हॉबी। अटेंशन देना है पढ़ाई के ऊपर, स्टूडेंट और अटेंशन ना दे शोभता नहीं है।
इससे तो सब बाहर वाले स्टूडेंट पता पड़ जाता कम फेलों में पास।
हाँ, तो सबसे पहली बात है अटेंशन, पढ़ाई पर अटेंशन एक। दूसरा है रुचि, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है जानने में? केवल थोड़ा बहुत सुन लिया, पढ़ लिया और लिख लिया, उससे नहीं, उसकी गहराई में जब तक नहीं जाते वो मजा नहीं आता है। और मजा तभी आता है बहुत ज्यादा अध्ययनशील होता है स्टूडेंट, बहुत उसको पढ़ना अच्छा लगता है, वही उसकी हैबिट होती है, हॉबी होती है। बाकी लोग खेल कूद करेंगे, उसको वो पढ़ना अच्छा लगता है। दूसरा, तीसरा शौक, हॉबी, तीन शब्द है उसमें। तीन एक मुख्य होमवर्क बाबा ने जो दिए है 18 जनवरी की मुरली में, कोई भी बात, पहला होमवर्क, कोई भी बात इस पढ़ाई के बीच में ना आ जाए। कोई भी बात पढ़ाई के बीच में अगर आ जाए तो बात जो चल रही है वो मिस हो जाएगी, तो कोई भी बात इस पढ़ाई के बीच में ना आ जाए, एक। दूसरा, बुद्धि किसी आदत में बिजी तो नहीं है? अगर बुद्धि किसी आदत में बिजी है तो ये पढ़ाई मिस हो जाएगी फिर। तीसरा, और किसी सब्जेक्ट में अटेंशन नहीं हो, और किसी सब्जेक्ट में अटेंशन ना हो, बुद्धि किसी आदत में बिजी ना हो, या और कोई बात इस पढ़ाई के बीच में ना आ जाए। पढ़ाने वाला कौन है? परमात्मा पढ़ा रहे हैं, कभी सुना है? ऐसे महावाक्य थे उसमें, हम बाबा के पास जा रहे हैं, बाबा के पास जा रहे हैं, आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने अशरीरी बात पर समझाया, आज बाबा ने अच्छी अच्छी बात समझाई। आपस में मिलते हो तो क्या कहते हो? ऐसे ही कहते हो ना। इसके लिए लक्ष्य रखना है, पास होकर दिखाना है। उसमें भी चार प्रकार बताए, एक है पास, एक है अच्छा पास, एक है एक दो मार्क्स से पास, एक है फेल, एक दो मार्क्स से फेल, और एक है ज्यादा फेल। ऐसे चार कैटेगरीज बाबा ने उसमें इनडायरेक्टली बताई है। और जो फेल हो जाता है उसका क्या हो जाता है? नहीं, उसको फीलिंग आती है। जो फेल होता है उसको फील होता है, एक। जो फेल होता है साल भर क्या कहता है फिर? वो फेल हुआ, फेल हुआ, फेल हुआ, फेल हुआ, ये बात उसको याद रहती है। और तीसरा, कांध नीचे हो जाता है नेचुरल, जो फेल होता है। जो पास होता है उसको नशा होता है। इसके लिए पास होकर दिखाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हर हर समय हर परिस्थिति में पास होना है। और ये जो एग्जाम है इसका पेपर कभी भी आ सकता है, इसका टाइम कोई निश्चित नहीं है, प्रश्न निश्चित है, कौन सा क्वेश्चन है वो पहले ही पता हुआ है, प्रश्न तो पहले ही बता दिया है सब स्टूडेंट्स को, पर वो कब आएगा वो नहीं बताया हुआ है, कभी भी आ सकता है, एनी टाइम। जीवन ही प्रश्न है इसमें, जीवन के एग्जामिनेशन हॉल है ये, दिन रात आधी रात को भी क्वेश्चन आ सकता है। तो रेगुलर होना है, जो आज ही रेगुलर हुए हैं वो भी रेगुलर की लिस्ट में आ गए, पर ये मत सीखना कि एक दिन ठीक है। कितनी पॉजिटिविटी का हाईएस्ट पीक है ये, हाईएस्ट लेवल ऑफ सकारात्मक की पराकाष्ठा, कि जो आज रेगुलर हो गए वो रेगुलर की लिस्ट में है पापा ने कहा। तो ये पढ़ाई में रेगुलर, एक पढ़ाई में शौक, इंटरेस्ट और हॉबी, पढ़ाई में ये पढ़ाई पढ़ाने वाला टीचर भी कैसा है, कैसा है, किस विधि से पढ़ाता है,
कहानी,
कहानी तो अभी कल था 18 जनवरी में क्या था, किस विधि से पढ़ाता है,
सारे स्टूडेंट पास हो,
बहुत अच्छा वाक्य है, हाँ छपाई होती है, ऐसा पढ़ाता है टीचर भी, ऐसा है इस विधि से पढ़ाता है कि छपाई हो जाती है, जो सुना है वो भूलता नहीं है, ऐसी विधि से पढ़ाता है। और टीचर को भी कैसे बच्चे पसंद है, इसका क्या उत्तर दिया था, आप जैसे बोला था ना। तो इस पढ़ाई में हमारा इतना अटेंशन, शौक, इंटरेस्ट, रुचि है, इतने हम उसमें रेगुलर है, उसकी इतनी गहराई में हम जा रहे हैं जितनी गहराई में वो लेके जाना चाहता है, ये सब चिंतन के विषय है। एक अच्छा जो विद्यार्थी होगा उसकी क्या क्वालिटीज है, आइडियल स्टूडेंट, कुछ पावरफुल क्वालिटीज उसकी, रेगुलर होगा, पंक्चुअल होगा, एक और टाइम वेस्ट नहीं करेगा, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेगा, चाहे क्रिकेट मैच हो चाहे कुछ भी हो, उसको पता है एग्जाम सामने है तो बस पढ़ाई में लगा रहेगा, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं। एक दो, तीसरा
आज का लेसन कल पे नहीं छोड़ेगा,
आज का लेसन कल पे, प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब टालेगा नहीं कोई चीज को, आज का आज ही करेगा, आज का पार्ट आज ही हो जाना चाहिए,
नींद फिट जाएगी,
उसकी नींद भी थोड़ी फिट जाएगी, ठीक है चलो, इज्जत का ख्याल रखेगा, रिस्पेक्ट रखेगा माँ बाप की, टीचर की, सबकी। और आइडियल स्टूडेंट, स्मार्ट स्टूडेंट, हार्ड वर्कर होगा, सिंसियर होगा, ऑनेस्ट होगा, और
टीचर जो बताता है उससे कुछ एक्स्ट्रा करने की,
टीचर जो बताता है उससे एक्स्ट्रा करेगा कुछ, वहीं तक नहीं, वो दुर्योधन, अश्वत्थामा पूछता है ना उसको कि अर्जुन को और दुर्योधन को, दोनों को तो आपने समान ज्ञान दिया, परंतु अर्जुन आगे क्यों चला गया, तो द्रोणाचार्य उसको वही कहते हैं कि अर्जुन को, दोनों को तो समान सिखाया, पर अर्जुन वहां जहां तक मैंने सिखाया वो रुका नहीं, उसने और अभ्यास किया, और अध्ययन किया, और प्रैक्टिस की, और आगे बढ़ा।
जैसे आपने बिजनेस वाले बताया,
कौन से
बिजनेस जिसको दो था, एक को से,
हाँ 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 दो, तो वो थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा करता एफर्ट वो। और अच्छा स्टूडेंट, सब लोग बताओ,
औरों को भी आगे
बढ़ाए, औरों को भी सिखाएगा थोड़ा सा, चलो वो भी एक अच्छा है, वो स्मार्ट है और दूसरों को भी स्मार्ट बनाएगा, ठीक है।
कोई अगर बात उसे पता चले कि गलत है, इशारा मिल दे, वो हमेशा के लिए उसको
छोड़ देगा, ओके। जैसे कि उदाहरण,
देर से उठना है, अमृत वेला नहीं है,
नहीं अमृत वेले की बात छोड़ो, हम लौकिक की बात कर रहे हैं, जो लौकिक के स्टूडेंट है, इमेजिन करो सातवीं कक्षा का स्टूडेंट है, दसवीं का स्टूडेंट है, उसकी बात, उसमें आप ये कह सकते हैं कि हाँ कि भाई वहां तो रात में, कई लोग रात में पढ़ते हैं, कई सुबह पढ़ते हैं, कई दोपहर में पढ़ते हैं, टाइम अलग अलग होता है उनका। और पावरफुल पॉइंट्स बताओ जो स्टूडेंट लाइफ में उसकी पढ़ाई के बारे में, ये तो हमने उसकी कुछ क्वालिटीज बताई, ये पढ़ाई कैसे करता है,
जो टीचर बोले उसी बुक का अध्ययन करेगा, तो
हाँ इधर उधर की बातों में, जैसा ये मुरली का होमवर्क में, तीन होमवर्क में एक होमवर्क है कि दूसरे सब्जेक्ट में अटेंशन नहीं डालेगा, अभी मेडिकल का स्टूडेंट है वो सड़क कैसे बनाएगा उसके बारे में थोड़ी ना सोचेगा, या इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है वो कोई दूसरी और कोई ज्योग्राफी की बुक थोड़ी पढ़ेगा, जो तुम्हारा काम है उससे पढ़ो, बाकी चीज से क्या लेना देना है तुमको।
मुरली सुंदर अगर सेवा याद आए तो रोंग
है वो। चलो वो तो सूक्ष्म है थोड़ा मिक्स्ड। नहीं यहां बात चल रही है कि जो उसका सब्जेक्ट है उसी में वो फोकस रहेगा,
हमेशा उसकी क्यूरियोसिटी बनी रहे।
हाँ ये एक हम इसमें आएंगे, पहले ये पूरा करते हैं, दिस इज अ वेरी पावरफुल पॉइंट। तो वो जो सब्जेक्ट है उसका उसमें पूरा ध्यान उसका केंद्रित रहेगा। अब यही सब्जेक्ट है उसको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। अगर हमारा ईश्वर ये सब्जेक्ट है तो हम विकारों की स्टडी नहीं करेंगे, ये फिल्म स्टार क्या कर रहे हैं और उनके क्या हो रहा है और किसके साथ घूम रहे हैं और किसके साथ शादी हुई और किसके साथ शादी टूट गई है और कौन वो कौन सा डांस कर रहा है क्या कर रहा है और कौन सी सीरियल चालू है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। कई लोग सीरियल चालू है ना, अभी सीरियल देखने में बिजी रहते हैं, ये टाइम पे तक सीरियल होती है, मैक्सिमम लोग सीरियल देखते हैं अशोका। तो कोई तो ऐसा भी करते हैं कि हम लोग तो बाबा को याद भी करते हैं, जब नीचे देखते तो बाबा को याद करते, ऊपर देखते सीरियल देखते। ऐसे एक बहन ने मुझे ऐसे बताया, तो नीचे जब खाते ना तो बाबा को याद ऊपर सीरियल, नीचे बाबा को याद ऊपर सीरियल। कोई तो ऐसे कहते कि हम टीवी देखते देखते बाबा को याद भी करते और टीवी भी देखते, दोनों काम साथ साथ करते। तो करो अभी, अच्छी बात है, अगर वो कर सकते तो उससे बढ़िया और कुछ नहीं है, फिर करते रहो। पर इतना आसान नहीं है, मल्टीटास्किंग। तो जो सब्जेक्ट होगा उसी में इंटरेस्ट होगा, बाकी और चीजों में उसको कोई लेना देना नहीं। एक दूसरा क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, जानने की उत्सुकता, सत्य की खोज, सत्यान्वेषी रहेगा वो, सत्य का अन्वेषण करते रहेगा। सत्यान्वेषी एक शब्द है हिंदी में, सत्य की खोज, क्या सत्य है, केवल आत्मा परमात्मा और ये यहां रहता है वहां रहता है या ये बाप संगम पर आते हैं, ये सब जानना ये कोई सत्य, इतना सत्य नहीं है। उसकी गहराई में जाना, आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र जान लेना, ये तो छोटे किसी को भी कोर्स करा दो तो वो कोर्स कराना चालू हो जाता है, ये कोई अध्यात्म इतना आसान तो है नहीं। इसमें तो जन्म जन्म की वासनाएं हैं, जन्म जन्म का रिकॉर्डिंग है पूरा सीडी में, वो सारा डिलीट करना है और नया भरना, ये बड़े काम है थोड़े। तो खोज करना, ढूंढना, समझना क्या है ये, छोटा बच्चा होता है ना उसको कितनी उत्सुकता होती है, बड़े लोगों में इतनी उत्सुकता नहीं है, उसको उत्सुकता है हर चीज की कि ये ऐसा क्यों ये वैसा क्यों। वो छोटे छोटे वो सीप और मोती बीनता है समुद्र के किनारे, समुद्र को देखता है, वो सूरज को देखता है, हर चीज में उत्सुकता है उसकी। तो उनको वो हर चीज जानना चाहते हो, हमारे अंदर भी ज्ञान के प्रति ऐसी उत्सुकता हो। अच्छा ये महावाक्य बोला इसका क्या अर्थ है, अच्छा ये ऐसा कहा, ये दीपक है ये घृत है ये बाती है ये इसका क्या अर्थ है, ऐसा क्यों कहा, अच्छा क्या ज्ञान और योग के बिना खुशी नहीं हो सकती। ये हमारा चिंतन इस डायरेक्शन पे उल्टा अभी चिंतन चालू कर दो इस तरह का, कि अगर हम सोचे कि ज्ञान योग को बाजू रखो और खुशी को हम हासिल करें, कैसे हासिल करें इसके ऊपर चिंतन करो, देखो फिर होती है या नहीं होती है। नहीं नहीं, ज्ञान योग को हटा के खुशी होती है या नहीं, आज का जो स्लोगन है उसको हम अगर चिंतन का विषय बिंदु बनाए तो हम उसके ऊपर थोड़ा गहराई से जाएंगे और पता चलेगा कि नहीं होती है, फिर ये राइट है। साइंटिस्ट कैसे करते हैं, हाइपोथेसिस करते हैं, ए इक्वल टू बी ये प्रूव करना है, तो सबसे पहले चालू कहां से करता है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, एक 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 थियोरम जोड़ते जाओ, सिद्धांत तो डालते जाओ, फिर पता चलता है कि नहीं भाई ए इक्वल टू बी, तो इसमें चिंतन चालू हो जाता है इतना सारा, ये सोचते सोचते ही। तो इस तरह से हर वाक्य को लेके उसके टुकड़े टुकड़े करना, जैसे कल का स्लोगन था, मांगने वाले कभी भी खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकते, हमने इतना पढ़ा और छोड़ दिया, इसको और थोड़ो और थोड़े टुकड़े टुकड़े करो इसके। अच्छा मांगने वाले संपन्न नहीं हो तो कौन संपन्न हो सकते, तो देने वाले। तो इसी स्लोगन का हम दूसरा रूप तैयार करके रखे अभी, उसका ही जो दाता है वो खुशी के खजाने से संपन्न है, उसी वाक्य को हमने हटा के अब ये वाक्य खड़ा करे, तो ये दो वाक्य हो गए। तो इससे हमारा थोड़ा सा मतलब और थोड़ा चिंतन हुआ उसके ऊपर, नहीं तो चिंतन पढ़ लिया याद रख लिया हो गया खत्म, एक हफ्ते के बाद पूरा गायब है ही नहीं, बिल्कुल पता ही नहीं, क्लीन स्लेट। तो ये जो रिवाइज करने वाली बात है ना, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा हम कहाँ थे, जिज्ञासा। तो जो स्टूडेंट होगा उसको जिज्ञासा होगी, सत्यान्वेषी होगा, सत्य का खोज करने वाला होगा। और
निद्राजीत,
नहीं निद्राजीत तो नहीं, नींद जरूरत है, नींद करता है अच्छा स्टूडेंट, वो निद्राजीत नहीं बनेगा। निद्राजीत तो उसको पता है, उसको एग्जाम भी देनी है, पढ़ाई भी करनी, नहीं तो बैलेंस रखेगा। हाँ ये कह सकते हो कि भोजन और नींद का बैलेंस, योगी जीवन में दो ही चीजें जरूरी है, भोजन और नींद, इसका बैलेंस बस। जिसने ये दो कला सीख ली पूरा योगी जीवन सफल। जो यही तो कला सीखी नहीं जाती है, कभी भोजन बहुत अच्छा बनता है तो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी ज्यादा, और कभी नींद ज्यादा, कभी नींद कम। नींद और भोजन, योग के लिए दो बातें खाली चाहिए, एक पेट और बुद्धि। बुद्धि व्यर्थ से खाली चाहिए और पेट भी थोड़ा खाली ही चाहिए। जो बहुत भरा हुआ पेट है वो कहाँ योग कर सकता है।
तो सांस फूलते रहे, नींद कितना चाहिए?
नींद डिपेंड करता है 6 से 7, 6 घंटे ले लो। फिर वो दूसरी बात है कि अगर योगी अपनी साधना जैसे जैसे बढ़ाते जाएगा, तपस्या जैसी जैसी बढ़ती जाएगी, आत्म संयम जितना जितना आते जाएगा, और ये भोजन से आसक्तियां कम होती जाएगी, तो नींद स्वतः ही कम होने लगेगी। फिर वो करना नहीं पड़ेगा, वो स्वतः ही हो जाए। करोगे तो फिर मुश्किल है, स्वतः होती जाए। एक तो ये बात हो गई, और तो बैलेंस, नींद और भोजन का बैलेंस, अच्छा स्टूडेंट। दूसरा, पढ़ाई कैसे करेगा वो अभी तक नहीं बताया है, ये तो बाकी की बातें हैं सारी। पढ़ाई उसकी टेक्निक्स होती है पढ़ाई की, वो स्मार्ट स्टूडेंट होगा। हाँ अभी ये यहाँ आ जाओ, मुरली की स्टडी कैसे करेगा वो, स्टडी कहो या पढ़ाई कहो, तो वो जो पढ़ाई है उसकी, एक तो सबसे पहले उसके पास चेयर और टेबल चाहिए, स्टूडेंट लाइक एटीट्यूड के लिए एक टेबल और चेयर की आवश्यकता है। अभी इसमें तो हजारों प्रश्न आएंगे, हमारे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लाइब्रेरी है, डाइनिंग है, कहीं पर भी बैठ के पढ़ाई, ये अगर यहां की बात कहो तो सबसे पहली जो है कहां पढ़ाई करेगा, एक है तो टेबल और एक चेयर, ऐसा उसका एटीट्यूड, स्टूडेंट लाइक एटीट्यूड, और एक ही जगह बैठेगा वो, ज्यादा उसको अच्छा लगेगा। एक तो ये, दूसरा बेड पर कभी पढ़ाई नहीं करनी। कई लोगों को बेड पर पढ़ाई करने की आदत होती है, बेड पर बैठकर। बेड जो है ना बिस्तर, वो केवल सोने के लिए रखो उसको बस, भोजन और पढ़ाई ये दो चीज उसके ऊपर नहीं करनी। नहीं वो नहीं बना, स्टूडेंट लाइक एटीट्यूड जो है वो वहीं पे आ जाना चाहिए। जैसे स्टूडेंट पढ़ता है ना, बैठ के किताबें सामने रहेगी, उसके पास पेपर्स रहेंगे, पेन रहेंगे, अलग अलग पेंसिल रहेंगी, कलर पेपर रहेगा, तो जैसे वो पढ़ाई करता है ना, वो पढ़ाई है ये, तो इसको भी इस तरह से पढ़ाई करनी है कि उसमें वो पॉइंट्स निकालेगा, वो मुख्य हेडिंग्स देखेगा क्या क्या है आज का, अच्छा वरदान ये है, स्लोगन ये है, ये है वरदान, ऐसा ऐसा है, इसको कैसे याद रखा जाए, उसको कैसे याद रखा जाए। एक तो ये, दूसरा कई लोगों को खड़े खड़े ज्यादा याद रहता है, खड़े खड़े पढ़ाई करते हैं, मतलब मुरली की जो स्टडी है ना, खड़े रह के पढ़ेंगे।
नींद ना आए इसलिए खड़े,
नहीं नींद नहीं आई उसके लिए भी नहीं, वैसे भी कई कई लोग खड़े रहते हैं, बुद्धि दोनों एक्टिव हो जाते हैं, ब्रेन ज्यादा एक्ट। कई लोग चलते फिरते पढ़ते हैं, जैसे मैं चलते चलते पढ़ने की जिनको ज्यादा आदत है, तो ये अलग 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 रीति से पढ़ते हैं। हाँ वो तो खाने की बात दूसरी है, जैसे कोई लोग ट्रेडमिल करते हैं ना घर पे, तो यहाँ कोई किताब रख देते और पढ़ते हैं, ट्रेडमिल भी करते हैं, बॉडी और माइंड दोनों की एक्सरसाइज चालू। तो चेयर या खड़े रह के या चलते फिरते, और तीसरा जो हमेशा हम कहते हैं कि प्रकृति के सानिध्य में, वो एक छत पे प्रकृति के सानिध्य में, झरना, नदी, तालाब, समुन्दर, पहाड़, प्राकृतिक सौंदर्य, पंछियों की आवाज, मनुष्यों की आवाज से दूर, मनुष्यों की जहां आवाज भी ना हो, केवल प्रकृति की आवाज, प्रकृति का संगीत और नृत्य जहां हो, उसके सानिध्य में जो पढ़ाई करता है, बगीचे में जो पढ़ाई करता है, छत पे पढ़ाई करता है, एकांत में पढ़ाई करता है, ऐसी जगह पर जो पड़ा हुआ रहता है वो सीधा अंदर फिट हो जाता है। आज की मुरली में था ना, ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में बैठ जाना चाहिए, आज की मुरली में वाक्य है, ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में बैठ जाना चाहिए, तो वो ऐसे स्थानों पर बैठ जाता है। तो सबसे पहले तो ये, फिर कब पढ़ाई करें, कई लोग रात में पढ़ते, कई दोपहर में, कोई सुबह। सबसे बेस्ट टाइम है अमृत वेले के बाद का। अमृत वेले के बाद सबसे जो की कमाई चट होने का जो कार्य है वो है नींद। अमृत वेला हुआ कि सीधा हृदय के अंदर घुस गए, ये करना, अर्थात वो जो योग किया वो भी गया गया।
अमृत वेला की अच्छा बोले कि उसको जो भी बंद करके जैसे आप गुम हो गई।
अगर कोई 6 बजे उठता है रोज बिना अमृत वेले किए, दूसरा है जो अमृत वेला करके सोता है और फिर 6 बजे उठता है, दोनों की अवस्था सेम ही समझ लो। एक है जो सीधा 6 बजे उठता है, कोई अमृत वेला नहीं। दूसरा है जो अमृत वेला करता है पावरफुल, फिर सोता है और फिर 6 बजे उठता है। दोनों सेम अवस्थाओं में उठते हैं, ज्यादा फर्क नहीं है अवस्थाओं में। इसके लिए वो जो अमृत वेले के बाद का समय है वो चिंतन का समय है, मनन का समय है, पढ़ाई का समय है, अध्ययन का समय है, वो बेस्ट टाइम है। तो सबसे पहले तो हमने स्थान देखा, फिर समय, फिर उसके बाद में लाइब्रेरी। लाइब्रेरी यहाँ है क्या? ओ यही है लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में जाके बैठना, पढ़ना, किताबें देखना, कौन सी नई किताब है, क्या है, कैसा है, अच्छा ये हो गया। फिर उसके बाद में जो पढ़ाई है उसमें कौन से शब्द आ रहे हैं, नया क्या चीज है, नई नए वाक्य निकालना, उसमें कोई नया शब्द आ रहा है, कठिन शब्द आ रहा है, उसका अर्थ ढूंढना, ये एक। फिर और स्टूडेंट क्या करेगा, अच्छे स्टूडेंट, स्मार्ट स्टूडेंट ग्रुप स्टडी करते हैं। एक होता है एकांत में बैठ के अपना इंडिविजुअल स्टडी करना, वो भी जरूरी है, पर और ज्यादा जरूरी है ग्रुप स्टडी। ग्रुप स्टडी अर्थात कोई ऐसा ग्रुप हो कि जिसके साथ बैठे और चर्चा करे ज्ञान की, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती समझ में नहीं आती है। ये हर क्षेत्र में जरूरी है ग्रुप स्टडी। हम पूरा कर लेते हैं फिर 5 मिनट की बात करेंगे। अच्छा, और अच्छे स्टूडेंट की और क्या निशानी है? ग्रुप स्टडी एक हो गया, पढ़ाई का टाइम हो गया, पढ़ाई का एटीट्यूड हो गया, नोट्स बनाएगा, उसके पास अच्छे अच्छे नोट्स बनाएगा, वो नोट्स पे भी नोट्स, रीराइटिंग द नोट्स। तो नोट्स एक तो मुरली क्लास में जो लिखते हैं वो नोट्स, फिर उसको और करेक्ट करना अलग एक तो ऐसा, हाँ वो भी आएंगे। एक दूसरी बात है कि एक डायरी ऐसी हो कि जिसमें केवल स्लोगन और वरदान ही लिखे हो, बस बाकी और कुछ नहीं लिखे, ताकि हम ना थोड़ा एक हफ्ते के पहले, जैसे अभी रविवार आ गया ये, तो इसके पिछले मंडे से लेके तो सैटरडे तक क्या स्लोगन और वरदान पढ़े वो हम संडे को एक बार रिवाइज कर ले, तो वो केवल फोकस्ड उतना ही हो। कई लोग मोबाइल पे भी सेव कर लेते हैं, एक ग्रुप बना के वरदान और स्लोगन का ग्रुप, उसमें केवल वरदान और स्लोगन ही, बाकी कुछ नहीं, उधर से कट इधर पेस्ट, वरदान स्लोगन, वरदान स्लोगन। तो वो हम, तो अच्छा स्टूडेंट क्या करेगा, नोट्स, एक तो वरदान स्लोगन का, दूसरा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो वहां से निकाल के लिख देना उसके ऊपर, तो नोट्स बनाएगा, ये एक काम करेगा। और क्या करेगा अच्छा स्टूडेंट?
स्टूडेंट हर वक्त एक बुक रखता ही रहता
है। हाँ, उसके ऊपर उसको बहुत शौक रहता है पढ़ने का, इसके लिए नई नई किताबें, नई नई अव्यक्तवाणी।
95 ईयर्स के थे तो भी वो 12-13 10 घंटा देखकर पढ़ते रहते थे।
हाँ, तो उनको अच्छा लगता है वो पढ़ना, क्योंकि एक जो भ्रांत, मतलब एक जो बात जो संसार में बहुत ज्यादा ये फैल गई है कि कुछ कुछ लोग खाली पढ़ते ही रहते, पढ़ने से क्या होता है, अनुभव करना होता है केवल पढ़ने से, परंतु ऐसा देखा गया है कि जो बहुत अध्ययनशील है और जो पढ़ाई करते हैं बहुत सारी बातें उनको पता होती है, बहुत सारी बातें पहले से। जैसे आप कोई नए स्थान पर जा रहे हैं, यहां से आप जा रहे हो अहमदाबाद, अभी एक है डायरेक्ट चले जाना और फिर वहां जाके देखना सब कुछ ढूंढना, एक है पहले से ही जान लेना अहमदाबाद में क्या क्या है, सारी चीजें अहमदाबाद की पहले ही हम पढ़ ले कि अहमदाबाद में ये स्थान है, ये चौक है, ये गाड़ियां है, ऐसे ऐसे जाते हैं, यहां से ये इतना किलोमीटर है, वहां से वो उतना किलोमीटर है, पूरा अध्ययन कर लिया और फिर गए,
टाइम
भी बचत होगा और एकदम अनजाने से नहीं लगेंगे, नहीं तो हम डायरेक्ट चले गए और कुछ पता ही नहीं वहां का,
पूछते
पूछ दो, इसको पूछो, उसको पूछो, उसको पूछो, वो फिर भी जब सब पता है और उसने पूछा तो भी ठीक है वो, परंतु यहां तो कुछ भी पता नहीं है। इसके लिए हर चीज का थोड़ा पहले ही पता चले चाहिए, इसके लिए ये सारा ज्ञान जो आता है ना बुक से आता है। इसके लिए जो संसार में जितनी महान आत्माएं हुई है वो निरंतर कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ इस तरह से पढ़ते रहती थी। वो विवेकानंद के बारे में दिखाया है, एक बार विवेकानंद एनसाइक्लोपीडिया है, ब्रिटानिया एनसाइक्लोपीडिया की 36 वॉल्यूम्स है, इतनी एक है, उसमें हर चीज का वर्णन है। सुना यहां है लाइब्रेरी में, पता नहीं मुझे, हर लाइब्रेरी में होती है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, इतनी इतनी एक एक होती है, ऐसे 36 वॉल्यूम, 36 उसके खंड है, उसमें हर चीज, अगर ये फूल के बारे में देखो, प्लास्टिक के बारे में देखो तो एक एक पेज, तो दिखाया गया है तो विवेकानंद एक बार विदेश में थे, तो एक बार ऐसे ही बैठ वो लाइब्रेरी में सारी रखी हुई थी वो पढ़ रहे थे, तो उसका एक मित्र आया और कहने लगा देखो ये क्या क्या बना के रखते हैं लोग, अब ये 36 कौन पढ़ने वाला, इतना टाइम है क्या अब जीवन में इतना पढ़ने के लिए? तो वो कहता है कि क्या बात कर रहे हो, मेरे तो 11 अभी पढ़ के हो गए हैं। तो वो ऐसा तो वो लेते हैं और पूछता है मैं पूछता हूं तुमको, और वो खोल के उसको पूछते है बीच से कोई भी, वो बराबर बताता है पेज नंबर कौन सा था और क्या था, बार 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 अध्याय। फिर वो पूछता है उनको कि ये कैसे किया तुमने, ये तुमको याद कैसे रहा? वो कहता है ये याद रहा केवल एक ब्रह्मचर्य की शक्ति से। जैसे ब्रह्मचर्य की शक्ति बुद्धि में धारण होती है, आई हैव नॉट अलाउड माई माइंड टू हैव अ सिंगल सेक्सुअल थॉट, ये उसका उत्तर था वहां पर। एक भी कामुक विचार संकल्प भावनाएं मैंने अपने मन में आने नहीं दी, उसके वजह से प्रचंड ब्रह्मचर्य की शक्ति जो ओज में परिवर्तन हो गई है। इसके लिए ये सारा द प्योरर द माइंड द इजियर इट इज टू कंट्रोल, जितना मन शुद्ध है उसको वश में करना उतना सहज है, जितना मन शुद्ध है उसको स्मृति उतनी शक्तिशाली है, इसके लिए वो सहज हो गया, ऐसा उत्तर वो उसको देता है। तो ये वाली बात है, तो अच्छा स्टूडेंट जो होगा वो बहुत 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 अध्ययनशील होगा, सारा कुछ पढ़ेगा। ज्ञानामृत अभी यहां हमारे पास क्या क्या है, ज्ञानामृत है,
मीडिया
प्यूरिटी है, मीडिया है, जगदीश भाई की किताबें है, अव्यक्त वाणियां है, स्पार्क की किताबें है, और बहुत सारी किताबें छोटी छोटी, अभी तो ढेर निकला हुआ है, वर्ल्ड रिन्यूअल क्लास है, कितनी सारा ज्ञान का तो भंडार है जैसे जाता, परंतु वो सारा ग्रहण भी तो हो, उसके लिए इतनी उत्सुकता, इतनी जिज्ञासा, उतना इंटरेस्ट, रुचि, हॉबी, अटेंशन, वो सब चाहिए सारा एक साथ, उसके ऊपर पूरी मुरली है। बाबा ने कहा शौक को बढ़ाओ, अटेंशन को बढ़ाओ, तुम्हारा फर्ज है अटेंशन देना पढ़ाई के ऊपर। तो ये सारी बातें पढ़ाई की है। तो आज कौन सा वार है, ट्यूसडे, हम सैटरडे को मिलेंगे फिर से, तो सैटरडे को, सैटरडे तक उधर की क्लास हमारा, उधर 69 का पूरा मुरली पूरा हुआ, अभी हम हफ्ते में दो बार 1970s की मुरली दूसरे दूसरे सबको देके करने वाले हैं, कोई तो पढ़ के आएगा और पूरा सुनाएगा चिंतन सहित, वो अभ्यास उधर चालू कर रहे हैं। तो यहां के ग्रुप में जो डेली आप साकार मुरली जो है उसमें, जैसे मैंने कहा कि वरदान और स्लोगन, केवल पढ़ना नहीं, थोड़ा चिंतन करना उसके ऊपर, उसका विस्तार करना और थोड़ा प्रैक्टिकल में लाने की कोशिश करना उसको जीवन में, आज के आज ही, कि आज का आज क्या करना है, चेकिंग, और जो रिवीजन जो बात है, बार 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 रिवाइज करना उसको, नोट्स छोटे छोटे, बहुत बड़े बड़े नोट्स भी नहीं, छोटी सी डायरी रखो ताकि वो बार बार देख सके, या मोबाइल में ही सेव करो। और जो कहा कि सुबह का जो टाइम है वो थोड़ा चिंतन में देना है, मनन में देना है, पढ़ाई में देना है, सुबह भी पढ़ाई हो, शाम को भी, रात को सोते, यहां से अभी जाते हैं तो थोड़ा सोने से पहले बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, थोड़ा सा पढ़ लेना बस, थोड़ा सा, ताकि वो पावरफुल हो, पर कुछ कि ऐसा हो कि बस उसको बुद्धि पकड़ ले, ऐसा कुछ 2-3 महावाक्य, बहुत ज्यादा पढ़े तो याद नहीं रहता है, जितना पावरफुल हो और जितना, या फिर कल की जो मुरली मोबाइल पे तो आ जाती है तो वो मोबाइल पे देख ले, कल का स्लोगन क्या है, वरदान क्या है, आज ही रात में। और योग का जो हमने कहा ना, सोते सोते बिस्तर पे जब लेट गए तब ये संकल्प करके सोना कि मैं आत्मा हूं, अपने अंदर एक कमेंट्री चालू करना, कमेंट्री देते देते सो जाना कि मैं आत्मा, चली अब यहां से निकल के ऊपर, आत्मिक स्वरूप में स्थित होके सोना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही टाइम पे सबकॉन्शियस माइंड जैसे बहुत एक्टिव होता है, यहां किए हुए संकल्प सारे उधर चले जाते हैं उस समय, सोते समय और सुबह उठने के बाद, उठने के बाद से भी सोते समय जो है ना, वो उस पर ज्यादा स्टडीज हुई है साइंटिस्ट लोगों ने, कि बस सो रहे हैं, रिलैक्स हो गए हैं और वहां जो संकल्प हम कर रहे हैं वो सीधे अंदर जाते हैं, और रात के सोने का जो अंतिम संकल्प है वो उठने का पहला संकल्प, ये भी है। तो साकार मुरलियों पर ज्यादा अटेंशन, एक दूसरा अव्यक्तवाणी का भी कुछ स्टडी कर रहे हैं यहां पर, अव्यक्तवाणी का भी करना चाहिए मेरे ख्याल से, केवल साकार तो है ही है डेली का, पर कोई एक नहीं, ग्रुप में आप क्या करो, यहाँ पर अगर जितने भी आप लोग आते हैं 5-6-7-8 लोग, जैसे हम अगर वहां चालू करें तो आप भी वैसे ही चालू कर सकते हो। 70s की जो मुरली है, 70s की मुरली ले लो और एक व्यक्ति को वो पढ़ने को दे दो, वो पूरा अध्ययन करके आएगा और हफ्ते में एक ही बार सुनाएगा। जैसे मंडे, मंडे या बीच का गुरुवार ले लो, गुरुवार को 6 लोग हैं 7 लोग हैं, एक 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 तारीख की मुरली, तो वो पूरा अध्ययन करके आएगा डिटेल में। बाकी लोग तो खाली पढ़ के आएंगे और वो यहां बैठे या अलग से बैठे और सबको सुनाए कि ये मुरली में बाबा ने ये कहा, तो उसको भी थोड़ा ज्यादा अटेंशन रहता है मुरली सुनाने का, क्योंकि पढ़ा हुआ है उसने। तो वो एक कर सकते हो आप, एक 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 मुरली ले लो एक हफ्ते में एक, और बाकी दिन तो जो चल रहा है वो चलने दीजिए। और थोड़ा योग के भी प्रयोग को ज्यादा बढ़ाना है।
ये कर रहे भाई। हाँ, योग के प्रयोग मतलब पूरे दिन में प्रैक्टिकल में हमने जो हमने जैसे रात को प्लानिंग करते हैं, जैसे अष्ट शक्तियों का भी ले रखा है, तो सब लोगों ने क्या अनुभव किया प्रैक्टिकल, मैंने सेवा में किया, मैंने जैसे
इसमें किया। हाँ, वो तो है। और एक चीज मैं एडिशन करना चाहूंगा इसमें कि हर दिन एक व्यक्ति योग की कमेंट्री करा है, जो हम सोच रहे अभी उधर चालू करने का, मतलब योग की कमेंट्री मतलब एक 10 मिनट की, तो वो उसकी कमेंट्री रेडी हो और उसने वो कमेंट्री शाम को रिवाइज की हो, अमृत वेले की हो और उसके बाद में फिर यहां कराए, सब लोग बैठे और वो एक व्यक्ति योग की कमेंट्री सबको कराए।
योग करते हैं तो कमेंट्री के साथ करें,
कमेंट्री के साथ, और वो एक व्यक्ति तैयार करके आए पूरा, और उसका वो अनुभव के साथ, जैसे वो आप किताब ले लो अनुभूति, हम वही चालू करने वाले अभी एक दो दिन में वहां पर, कि म्यूजिक के साथ म्यूजिक चालू हो और वो जो जिसको काम दिया हुआ है उसमें ड्रिल है, ड्रिल 1 ड्रिल 2 ड्रिल 3, वो जो बीच का है कोई भी वहां से ले लो, या अपने आपको जो अगर आपको अच्छा लगता है अपनी एक ड्रिल तैयार करो और सबको कराओ हर दिन एक 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 अलग अलग, तो वो योग का भी अभ्यास होगा और ज्ञान में इसको बढ़ाना है। कुछ कुछ बातें उसमें से याद रखनी है, वो महत्वपूर्ण है। ये तो मुरलियां तो हजारों चल रही आई और गई, हमने पकड़ा कुछ भी नहीं, तो फिर क्या, कुछ तो मेन चीजें तो पकड़नी है उसमें से, तो ही तो वो समय की डायरी में दिखेगी टाइम पर, नहीं तो कुछ भी नहीं दिखती, केवल डायरी और उसमें रह जाती है। अच्छा, ओम शांति।